नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए प्रचार जोर शोर से जारी। प्रमुख राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता मतदाताओं को लुभाने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं। दूसरे चरण में मतदान के साथ 11 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा चुनाव संपन्न। उत्तराखंड के जंगलों में लगी भीषण आग को बुझाने के लिए वायुसेना के हेलीकॉप्टर तैनात। भारत ने चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के चरण एक में 3 स्वर्ण पदक जीतकर कंपाउंड टीम स्पर्धाओं में क्लीन स्वीप किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज दोपहर दिल्ली में मुंबई इंडियंस का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से और शाम को लखनऊ में राजस्थान रॉयल्स का सामना लखनऊ सुपर जायंट से होगा। दोपहर समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। लोकसभा चुनाव के शेष 5 चरणों के लिए प्रचार अभियान जोरों पर है। तीसरे चरण में 12 राज्यों की 94 सीटों पर 7 मई को मतदान होगा। इस दौर में कुल 1,351 उम्मीदवार मैदान में हैं। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के कोल्हापुर में तपोवन भूमि में और गोवा के वास्को में जनसभा को संबोधित करेंगे। श्री मोदी कोल्हापुर से महायुति के उम्मीदवार और सांसद संजय मांडलिक तथा हतक नंगले से प्रत्याशी धैर्यशील माने के पक्ष में प्रचार करेंगे। कांग्रेस ने कोल्हापुर से शाही परिवार के छत्रपति शाहू महाराज को प्रत्याशी बनाया है। गृहमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने भरोसा जताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के दौरान भारत दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो जाएगा। गुजरात के पोरबंदर में आज एक जनसभा में श्री शाह ने अनुच्छेद 370 निरस्त करने जैसे ऐतिहासिक फैसले, राम मंदिर का निर्माण और आतंकवाद तथा नक्सलवाद के खतरे से सफलतापूर्वक निपटने और देश में शांति का प्रसार करने के लिए प्रधानमंत्री की प्रशंसा की। श्री शाह ने नीतियों के ध्रुवीकरण और वोट बैंक की राजनीति करने के लिए कांग्रेस पार्टी की आलोचना की। उन्होंने देश के वर्तमान तीर्थ स्थलों के पुनरुद्वार के लिए श्री मोदी की सराहना भी की। उधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने वलसाड जिले के धर्मपुर में एक रैली में पिछले 10 साल में गरीबों और जनजातीय लोगों पर अन्याय के लिए भाजपा की आलोचना की। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी चुनाव जीतने पर सभी खाली सरकारी पदों को भरेगी।
हमारी गारंटी है कि जितने सरकारी पद केंद्र में खाली पड़े हैं उन सबको भरा जाएगा। 5,000 करोड़ रुपए का एक फंड बनेगा ताकि जो नौजवान है अगर वो छोटा सा अपना कारोबार शुरू करना चाहता है तो उसके लिए सुविधा होगी। जो बच्चे स्नातक पास हैं उनको 1,00,000 रुपए दिए जाएंगे और एक अप्रेंटिसशिप का प्रोग्राम होगा उनके लिए, ताकि जब इनकी शिक्षा पूरी होती है, जब रोजगार मिलने से पहले इनको अप्रेंटिसशिप मिलेगी और इनको 1,00,000 रुपए सालाना मिल जाएंगे।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज असम में रैली को संबोधित करेंगे। वे गुवाहाटी में संवाददाताओं से बातचीत भी करेंगे। असम के मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता हेमंत बिस्व शर्मा भी आज रैली करेंगे। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के कई सदस्यों ने आज भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर पार्टी महासचिव तरुण चुग, पार्टी के नेता मंजिंदर सिंह सिरसा और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा उपस्थित थे। पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि भाजपा ही देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को मजबूत कर सकती है।
हमारे सिख भाइयों ने किस तरीके से देश के लिए अपनी कुर्बानी दी, जितने भी आक्रमण हुए उस सारे आक्रमणों पर मुंह तोड़ जवाब देना और विजय हासिल करने में सिख भाइयों का बहुत बड़ा योगदान है। ऐसे सिख कौम के हमारे लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हों यह हमारे लिए गौरव की बात भी है, खुशी की बात भी है। और मैं ये मानता हूं कि अकेली भारतीय जनता पार्टी है जिसके माध्यम से हम देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा को हम आगे बढ़ा सकते।
लोकसभा चुनाव की विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज हम चर्चा कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के रायपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की। इस सीट पर तीसरे चरण में 7 मई को मतदान होगा। एक रिपोर्ट।
छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें हैं। इनमें से रायपुर संसदीय क्षेत्र से सबसे अधिक 38 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इनमें 5 महिला उम्मीदवार भी शामिल हैं। यहां मुख्य टक्कर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ब्रिजमोहन अग्रवाल और कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव विकास उपाध्याय के बीच है। ब्रिजमोहन अग्रवाल पिछले 8 विधानसभा चुनावों में रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट से लगातार विधायक चुने जा रहे हैं। वे वर्तमान में राज्य के स्कूल शिक्षा मंत्री हैं। पिछले 7 लोकसभा चुनाव से इस सीट पर लगातार भारतीय जनता पार्टी विजय दर्ज करती आ रही है। इस लोकसभा क्षेत्र में 23,75,000 से अधिक मतदाता हैं, जिनमें से करीब 11,88,000 महिलाएं और 11,86,000 पुरुष हैं। रायपुर लोकसभा क्षेत्र के तहत 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में कल मतदान के साथ 11 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव संपन्न हो गए। इस चरण में 88 लोकसभा सीटों पर लगभग 61% मतदान हुआ। मतदान आमतौर पर शांतिपूर्ण रहा और गर्मी के बावजूद मतदाताओं में उत्साह देखा गया। केरल की 20, कर्नाटक की 14, राजस्थान की 13, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की 8-8, मध्य प्रदेश की 6, असम तथा बिहार की 5-5, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ की 3-3 तथा मणिपुर, त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर में 1-1 सीट के लिए वोट डाले गए। त्रिपुरा में लगभग 80%, मणिपुर में 79 और असम में करीब 77% मतदान हुआ। उत्तर प्रदेश में सबसे कम लगभग 55% मतदान की खबर है। मध्य प्रदेश की बैतूल सीट पर होने वाला मतदान बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार के निधन के कारण अब तीसरे चरण में होगा। इस चरण में केरल के वायनाड से कांग्रेस नेता राहुल गांधी, तिरुवनंतपुरम से केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर और कांग्रेस नेता शशि थरूर, बेंगलुरु दक्षिण से भाजपा के तेजस्वी सूर्या, मथुरा से हेमा मालिनी, मेरठ से अरुण गोविल, मांड्या से कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी और पूर्णिया से पप्पू यादव प्रमुख उम्मीदवार थे। निर्वाचन आयोग ने बेंगलुरु के शांतिनगर में एक मतदान केंद्र में कथित तौर पर मतदान मशीन को चालू न किए जाने की रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। आयोग ने कहा कि सोशल मीडिया पर खबरें गलत और निराधार हैं। बेंगलुरु के जिला चुनाव अधिकारी ने कहा कि जांच में पाया गया है कि रजिस्टर और नियंत्रण इकाई में कुल प्रविष्टियों का मिलान बिल्कुल सही था। इससे पता चलता है कि ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है। निर्वाचन आयोग ने तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव पर अपुष्ट आरोप लगाने के लिए कांग्रेस की स्टार प्रचारक कोंडा सुरेखा को आगाह किया है। आयोग ने बीआरएस के प्रवक्ता से मिली शिकायत के बाद तेलंगाना के मुख्य चुनाव अधिकारी से रिपोर्ट मांगी थी। सुश्री सुरेखा ने आरोप लगाया था कि राव ने फोन टैप कर हेरोइनों सहित कई लोगों को ब्लैकमेल किया। आयोग ने यह भी कहा कि सुश्री सुरेखा ने चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया है और विशेषकर एक मंत्री होने के नाते उन्हें किसी भी दावे या आरोप के लिए शब्दों का चयन सोच समझकर करना चाहिए। लोकसभा की शेष सीटों पर उम्मीदवारों के चयन पर चर्चा के लिए कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की आज शाम दिल्ली के पार्टी मुख्यालय में बैठक होगी। इसमें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल और अन्य वरिष्ठ नेताओं के भाग लेने की आशा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsoneair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsoneair पर भी उपलब्ध हैं।
लोक निर्णय 2024
आम चुनावों पर विशेष कार्यक्रम
हर शाम 7 बजे से और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड पर।
चुनावी गतिविधियों की खबर, देश के हर अंचल पर नजर,
विशेषज्ञों की राय और विश्लेषण,
दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी पर्व में सुनिए
लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024।
दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य के जंगलों में लगी आग पर नियंत्रण की समीक्षा के लिए आज नैनीताल के हल्द्वानी में बैठक करेंगे। श्री धामी ने कहा कि नैनीताल जिले में आग पर काबू पाने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।
जंगलों की आग हमारे लिए बहुत चुनौती है और लगातार आग बढ़ी है, उसको लेकर हम लगातार तैयारी भी कर रहे हैं। जो जरूरत की चीजें हैं उसके लिए भी काम कर रहे हैं। सेना से भी हमने मदद मांगी है, सेना के हेलीकॉप्टर भी आज पानी डाल रहे हैं। हल्द्वानी में भी अभी इस पर मैं मीटिंग करने वाला हूं, कल यहां देहरादून में भी करी है। हमारा हर प्रयास रहेगा कि जल्दी से जल्दी इस आग पर काबू पाया जाए, हम इसके लिए काम कर रहे हैं।
राज्य में गढ़वाल और कुमाऊं जिलों के वन क्षेत्र में आग लगने की 575 घटनाओं में लगभग 690 हेक्टेयर भूमि प्रभावित हुई है। इससे 14,41,771 रूपये की वन संपदा का नुकसान हुआ है। नैनीताल के जंगलों में फैली आग पर नियंत्रण के लिए वायुसेना के हेलीकॉप्टर भीमताल झील से पानी लेकर उसका छिड़काव कर रहे हैं। मौसम विभाग ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्रों में अगले कुछ दिनों में भयंकर लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक आर के जनामणि ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में इसकी जानकारी दी।
कंडीशन है वो मेनली बंगाल का जो गंगेटिक वेस्ट बंगाल है और उड़ीसा है, इसी के लिए रेड कलर वार्निंग हीट वेव टू सीवियर हीट वेव ओवर उड़ीसा और जीडब्ल्यूवी के लिए किया गया है और ये 28 से लेकर के 30 तक तो रहेगा। हमारे पास जो तापमान मिला है वो 41 से 44 वहाँ रिकॉर्ड हो रहा है। 15 अप्रैल उड़ीसा से ये हीट वेव शुरू हुआ और जो गंगेटिक वेस्ट बंगाल है वो 17 अप्रैल से शुरू हुआ है, तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होने का उम्मीद है। कुछ छोड़ के झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये सब इलाका में भी हीट वेव ऑरेंज कलर हम लोग 3 से 4 दिन तक जारी किया है।
विभाग ने कहा है कि बिहार, झारखंड, तेलंगाना, रायलसीमा, अंदरूनी कर्नाटक, तमिलनाडु, पूर्वी उत्तर प्रदेश, केरल, माहे, कोंकण, पश्चिम उत्तर प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश और यानम में मंगलवार तक भीषण गर्मी की संभावना है। गांगे पश्चिम बंगाल, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कुछ उप हिमालयी क्षेत्रों में भी इस दौरान भीषण गर्मी के आसार हैं। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में सोपोर के नौपाड़ा क्षेत्र में कल सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। इनके पास से हथियार और गोला बारूद सहित संदेहास्पद सामग्री बरामद हुई है। बृहस्पतिवार को पुलिस, सेना और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के संयुक्त दल ने नौपाड़ा में घेराबंदी करके तलाशी अभियान शुरू किया था, जिसके बाद ये मुठभेड़ शुरू हो गई। मणिपुर में हथियारबंद उपद्रवियों के हमले में कल रात केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 2 जवानों की मृत्यु हो गई। मृतकों में एक उपनिरीक्षक और एक हेड कांस्टेबल शामिल हैं। हमले में 2 अन्य जवान घायल भी हुए हैं। घटनास्थल पर अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजे गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप में भारत ने कंपाउंड स्पर्धा में क्लीन स्वीप कर 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। ज्योति सुरेखा वेनम, अदिति गोपीचंद स्वामी और प्रणीत कौर की महिला टीम ने फाइनल में इटली को पराजित किया। अभिषेक वर्मा, प्रियांश और प्रथमेश फोगे की पुरुष टीम ने नीदरलैंड्स को फाइनल में हराया। ज्योति सुरेखा वेनम और अभिषेक वर्मा की मिक्स्ड टीम ने फाइनल में एस्टोनिया को हराकर 3रा स्वर्ण पदक हासिल किया। आईपीएल क्रिकेट में आज 2 मैच खेले जाएंगे। दिल्ली में दोपहर 3:30 बजे दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। लखनऊ में शाम 7:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। अंक तालिका में राजस्थान रॉयल्स पहले, कोलकाता दूसरे, हैदराबाद तीसरे और लखनऊ चौथे स्थान पर है। दिल्ली 6ठे और मुंबई 9वें नंबर है। कल रात कोलकाता में पंजाब किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 8 विकेट से हराया। पंजाब ने T20 का सबसे बड़ा 262 रन का लक्ष्य 8 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया था। केरल के तिरुवनंतपुरम में जीना जस्टिस को पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका के कैम्ब्रिज शिक्षक पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। वे संयुक्त अरब अमीरात में शारजाह के अवर ओन इंग्लिश हाई स्कूल की शिक्षक हैं। सोशल जस्टिस को ये नामांकन धर्मार्थ कार्यों के प्रति उनके उत्कृष्ट नेतृत्व और समर्पण के लिए मिला है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और लगभग 16 लाख तीर्थयात्रियों ने पंजीकरण कराया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि यात्रा के लिए सड़कें, परिवहन व्यवस्था, पार्किंग, होटल, ढाबे, रेस्तरां और पुलिस यातायात व्यवस्था सहित सभी क्षेत्रों में सुधार किया गया है। श्री धामी ने अधिकारियों को यात्रा मार्गों पर विद्युत, पेयजल और सड़कों की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिये हैं। चारधाम यात्रा यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ की तीर्थ यात्रा है, जिसमें लाखों लोग भाग लेते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के 3रे चरण के लिए प्रचार जोर शोर से जारी। प्रमुख राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता मतदाताओं को लुभाने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं। 2रे चरण में मतदान के साथ 11 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा चुनाव सम्पन्न हुए। उत्तराखंड के जंगलों में लगी भीषण आग को बुझाने के लिए वायुसेना के हेलीकॉप्टर तैनात। भारत ने चीन के शंघाई में विश्व कप तीरंदाजी चरण 1 में 3 स्वर्ण पदक जीतकर कंपाउंड टीम स्पर्धाओं में क्लीन स्वीप किया है। और आईपीएल क्रिकेट में आज दोपहर दिल्ली में मुंबई इंडियंस का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से और शाम को लखनऊ में राजस्थान रॉयल्स का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।